एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो आजकल हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई।
हाँ,
और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन जरिया है, मार्था ऑलनी की किताब इन्फ्लेशन, व्हाट इट इज, व्हाई इट्स बैड एंड हाउ टू फिक्स इट।
हाँ बिल्कुल। महंगाई की बातें तो आजकल हर जगह हैं ही, किराने के बिल से लेकर लोन की किश्तों तक। ये सीधे हमारी जेब पर असर डालती है।
पर अक्सर ये समझ नहीं आता कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। मतलब बहुत कंफ्यूजन है।
सही कहा, कोई सरकार को दोष देता है, कोई कंपनियों को। मार्था ओलनी की ये किताब इसी धुंध को हटाने का काम करती है, ऐसा लगता है।
बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब के जरिए महंगाई के असली कारणों को परत दर परत खोलें, समझें कि इसका समाज पर, मतलब अलग अलग लोगों पर क्या असर होता है, और हाँ, इसे काबू करने के क्या तरीके हैं और उनमें क्या चुनौतियां हैं। मतलब एक साफ नजरिया बनाने की कोशिश करेंगे इस जटिल विषय पर।
बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले लेखिका की ही बात कर लेते हैं। मार्था ओलनी कौन है ये, और इनकी बात में ऐसा क्या खास है?
मार्था ओलनी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही जानी मानी सम्मानित टीचिंग प्रोफेसर है। उनका मेन काम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के जो बड़े मुद्दे होते ना, और उनका इतिहास, उसे पढ़ाना है।
हाँ, और जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये कि वो सिर्फ मतलब एक किताबी स्कॉलर नहीं है, उन्हें इकोनॉमिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को आम लोगों के लिए आसान बनाने में महारत हासिल है। इसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स में मिले हैं, और उनकी किताब किसी राजनीतिक तरफ झुकी भी नहीं लगती।
सही।
वो एक टीचर की तरह हैं। उनका लक्ष्य हमें जानकारी देना है, ज्ञान देना है, ताकि हम खुद सोच सके, एक गाइड की तरह, है ना?
एकदम सही कहा। वो हमें महंगाई के उलझे रास्ते पर रोशनी दिखाती हैं। यही इस किताब का असल मकसद ही लगता है हमें, आर्थिक रूप से साक्षर बनाना। तो ये किताब आखिर है क्या? इसे आप महंगाई पर एक यूजर मैनुअल जैसा समझ सकती हैं। ये किसी को अर्थशास्त्री बनाने के लिए नहीं है,
अच्छा,
बल्कि हम जैसे आम पाठकों के लिए है जिन्हें रोजमर्रा की आर्थिक खबरें बेहतर तरीके से समझनी है।
किताब का जो मूल विचार है वो ये कि महंगाई सिर्फ पैसों की ज्यादा छपाई या चीजों की कमी का नतीजा नहीं है। ओनली कहती हैं कि यह मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है। वो इसके तीन मुख्य इंजन बताती हैं। पहला, डिमांड पुल, यानी जब अर्थव्यवस्था में मांग, मतलब लोगों का, सरकार का, कंपनियों का कुल खर्च चीजों की सप्लाई से ज्यादा हो जाए।
हाँ।
दूसरा, कॉस्ट पुश, जब चीजें बनाने की लागत ही बढ़ जाए, जैसे कच्चा तेल महंगा हो गया या सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई।
और तीसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो है हमारी उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस। अगर हम सब ये मानने लगे कि भाई आगे महंगाई बढ़ने वाली है, तो हम आज ही उस हिसाब से बर्ताव करने लगते हैं जैसे दुकानदार शायद पहले ही दाम बढ़ा दें, कर्मचारी ज्यादा वेतन मांगने लगे।
अच्छा।
हाँ, और देखते ही देखते हमारी ये उम्मीद ही महंगाई को सच बना देती है। ओनली इन तीनों ताकतों के आपसी खेल को समझाती हैं।
तो किताब हमें एक सफर पर ले जाती है। पहले वो समझाती हैं कि महंगाई असल में है क्या, फिर उसे मापते कैसे हैं, जैसे वो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बला है।
हाँ,
फिर वो कारणों की तह में जाती हैं, मांग क्यों बढ़ती है, लागत क्यों चढ़ती है, और ये उम्मीदें कैसे काम करती हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि महंगाई का असर सब पर एक जैसा क्यों नहीं पड़ता, और आखिर में वो समाधानों पर आती हैं कि सरकार और सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं, और अक्सर उन्हें किन मुश्किल समझौतों से गुजरना पड़ता है।
चलिए अब इन पहलुओं को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत परिभाषा से करते हैं। महंगाई आखिर है क्या? कई बार हम सोचते हैं कि प्याज महंगा हो गया तो महंगाई आ गई, पर ओलनी कहती हैं कि नहीं, महंगाई किसी एक चीज के दाम बढ़ने का नाम नहीं है।
अच्छा।
ये है अर्थव्यवस्था में ज्यादातर चीजों और सेवाओं के औसत दाम में लगातार होने वाली बढ़ोतरी।
ओके, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे पैसे की कीमत घट रही है, मतलब जो 100 रुपए का नोट आज है वो कल कम सामान खरीद पाएगा।
बिल्कुल। यही ओढ़ी तीन शब्दों का फर्क भी समझाती हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, डिसइन्फ्लेशन महंगाई की रफ्तार का कम होना, और डिफ्लेशन कीमतों का गिरना। सुनने में शायद अच्छा लगे कि चीजें सस्ती हो रही हैं, पर डिफ्लेशन अक्सर इकोनॉमी के लिए ज्यादा खतरनाक होता है।
क्यों?
क्योंकि लोग खरीदारी टालने लगते हैं इस उम्मीद में कि दाम और गिरेंगे, और फिर पूरी अर्थव्यवस्था ही सुस्त पड़ जाती है।
अच्छा,
तो ये पता कैसे चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ी? यहाँ आता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रोल, है ना?
हाँ बिल्कुल।
इसे ऐसे समझें कि सरकार एक काल्पनिक टोकरी बनाती है जिसमें वो सारी चीजें और सेवाएं डालती है जो एक औसत शहरी परिवार इस्तेमाल करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, मनोरंजन, मतलब सब कुछ। फिर वो देखती है कि समय के साथ इस पूरी टोकरी को खरीदने का खर्चा कितना बदल रहा है। इसी बदलाव को हम महंगाई दर के रूप में सुनते हैं।
लेकिन ओनली ये नहीं बता भी है कि CPI परफेक्ट नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन बायस।
सब्स्टिट्यूशन बायस, वो क्या है?
मतलब मान लीजिए चिकन महंगा हुआ तो लोग शायद मछली ज्यादा खाने लगे, पर CPI की टोकरी इतनी जल्दी नहीं बदलती।
अच्छा, समझा।
फिर है क्वालिटी चेंज बायस। आज का फोन 10 साल पुराने फोन से महंगा है, पर वो बेहतर भी तो है।
हाँ, ये बात भी है।
और एक न्यू प्रोडक्ट बायस भी है, जब कोई नई चीज बाजार में आती है तो उसे CPI टोकरी में शामिल होने में वक्त लगता है। इन वजहों से कई बार हमें लगता है कि सरकारी आंकड़ा हमारी असल जिंदगी की महंगाई से कम है।
बिल्कुल, ये अनुभव तो हम सब करते हैं। अच्छा, अब आते हैं कारणों पर। ओनली दो मुख्य तरह के दबावों की बात करती हैं। पहला है डिमांड पुल यानी मांग की तरफ से खिंचाव। ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था में खरीदने वालों की कुल मांग यानी हम सबका, कंपनियों का और सरकार का कुल खर्च अर्थव्यवस्था की चीजें और सेवाएं पैदा करने की क्षमता से ज्यादा हो जाती है।
और ऐसा क्यों होता है?
कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है लोगों में भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ गया हो, लोन सस्ते हो गए हों, सरकार ज्यादा खर्च कर रही हो, या फिर एक्सपोर्ट बढ़ गया हो।
ओके, मतलब ये ज्यादातर तब होता है जब अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही होती है, लोगों के पास पैसा आ रहा होता है।
हाँ, अक्सर। दूसरी तरफ है कॉस्ट पुश यानी लागत की तरफ से दबाव। यहाँ महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि चीजें बनाने का खर्चा बढ़ जाता है।
अच्छा,
इसके पीछे सप्लाई साइड के कारण होते हैं, जैसे अचानक तेल के दाम आसमान छू जाएं, जैसा 1970 के दशक में हुआ था, या कोई बाढ़ आ जाए जिससे फसलें खराब हो जाएं,
या फिर जैसा हमने हाल में कोविड के दौरान देखा, पूरी सप्लाई चेन ही गड़बड़ा जाए।
बिल्कुल। इसी कॉस्ट पुश में एक और अहम चीज है मजदूरी। अगर मजदूरी बहुत तेजी से बढ़ती है तो कंपनियां उस बढ़े हुए खर्चे को कीमतों में जोड़कर ग्राहकों से वसूलने की कोशिश करती हैं, और फिर यहीं से वेज प्राइस स्पाइरल का खतरा पैदा होता है।
वेज प्राइस स्पाइरल मतलब
बढ़ती कीमतें देखकर मजदूर और ज्यादा वेतन मांगते हैं, और बढ़े वेतन से लागत और बढ़ती है जिससे कीमतें फिर बढ़ती हैं। ये एक तरह का दुष्चक्कर बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है।
बाप रे, तो मांग और लागत के अलावा ओनली एक तीसरे बड़े सटल लेकिन शक्तिशाली कारक पर जोर देती हैं, वो है हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस।
हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सोचिए, अगर किसी बिजनेसमैन को लगता है कि अगले साल महंगाई 10% बढ़ेगी, तो वो शायद आज ही अपने सामान के दाम 8-10% बढ़ा देगा, है ना?
हाँ, लॉजिकल है।
और अगर कर्मचारियों को लगता है कि महंगाई बढ़ने वाली है, तो वो पहले से ज्यादा सैलरी की मांग करेंगे।
तो जब सब ऐसा ही सोचने और करने लगते हैं,
तो वो उम्मीद हकीकत बन जाती है। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं।
अच्छा,
यहीं पर सेंट्रल बैंक जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अगर लोगों को RBI पर भरोसा है कि वो महंगाई को काबू में रखेगा, तो उनकी महंगाई की उम्मीदें भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी।
इसीलिए RBI बार बार कहता रहता है कि वो महंगाई को लेकर सजग है। ये सिर्फ बयान नहीं होता, ये लोगों की उम्मीदों को साधने की कोशिश भी होती है।
बिल्कुल।
तो महंगाई तो हो गई, पर क्या इसका असर सब पर एक जैसा पड़ता है? ओनली साफ कहती है, बिल्कुल नहीं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। महंगाई कुछ लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाती है, तो कुछ को शायद कम, या किसी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा भी हो सकता है।
तो नुकसान में कौन रहता है सबसे ज्यादा?
एक बार बढ़ती है, वो भी अगर महंगाई दर से कम बढ़ी तो, उनकी खरीदने की ताकत लगातार कम होती जाती है।
और कौन?
बचत करने वाले लोग। अगर आपने बैंक में पैसा रखा है और ब्याज दर महंगाई दर से कम है, तो आपके पैसे की असल कीमत तो घट रही है ना?
सही बात है।
साथ ही जिन्होंने पैसा उधार दिया है, मतलब लेंडर्स, उन्हें भी नुकसान होता है, क्योंकि जब पैसा वापस मिलता है तो उसकी कीमत कम हो चुकी होती है।
तो फिर फायदे में कौन रह सकता है? ऐसा भी होता है।
हाँ, हो सकता है। जैसे जिन्होंने फिक्स्ड ब्याज दर पर लंबा लोन लिया है, खासकर होम लोन, उनकी किश्त तो उतनी ही रहती है, लेकिन समय के साथ उनकी आमदनी बढ़ सकती है और उनके घर की कीमत भी।
अच्छा।
साथ ही जिनके पास जमीन जायदाद या सोना जैसी रियल एसेट्स है, महंगाई के दौर में अक्सर उनकी कीमत भी बढ़ जाती है, और ये फर्क जाहिर है समाज में असमानता को और गहरा कर सकता है।
बिल्कुल। अच्छा, तो कारण समझ गए, असर देख लिया, अब सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। यहाँ ओलनी दो मुख्य हथियारों की बात करती हैं।
हाँ, पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति, जो सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है, जैसे RBI के पास।
और इसका सबसे आम तरीका क्या है?
ब्याज दरें बढ़ाना। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोन लेना महंगा हो जाता है। लोग और कंपनियां कम उधार लेते हैं, कम खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम होती है और महंगाई पर लगाम लगती है।
ओके। और दूसरा हथियार?
दूसरा हथियार है फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति, जो सरकार चलाती है। सरकार अपना खर्च कम करके या टैक्स बढ़ाकर भी अर्थव्यवस्था में कुल मांग को कम कर सकती है।
लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल है ना, जिसे अर्थशास्त्री फिलिप्स कर्व ट्रेड ऑफ कहते हैं।
हाँ बिल्कुल। अक्सर देखा गया है कि जब महंगाई को काबू करने के लिए अर्थव्यवस्था को धीमा किया जाता है, तो उसका असर रोजगार पर पड़ता है, यानी बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो नीति बनाने वालों को इसी मुश्किल संतुलन को साधना पड़ता है, ग्रोथ चाहिए या महंगाई कंट्रोल, ये बड़ा सवाल रहता है।
उन्हीं कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी देती हैं, जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का वाइमार रिपब्लिक, भयानक हाइपर इन्फ्लेशन, नोटों की कीमत रद्दी से भी कम हो गई थी।
हाँ, वो तो एक्सट्रीम केस था। फिर 1970s के दशक में अमेरिका में स्टैगफ्लेशन, जहां महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, ये भी बड़ा मुश्किल दौर था।
और जापान का उदाहरण भी है, जो सालों तक डिफ्लेशन यानी गिरती कीमतों से जूझता रहा।
बिल्कुल। और हाल का पोस्ट कोविड दौर भी एक केस स्टडी जैसा ही है, जहां सप्लाई चेन की दिक्कतें, सरकारी मदद से बढ़ी मांग और बदलती उम्मीदों ने मिलकर महंगाई को हवा दी।
सही कहा। तो इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें, मतलब की टेकअवेज क्या हैं?
मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि मुद्रास्फीति के कई कारण होते हैं। किसी एक चीज को दोष देना, चाहे वो सरकार का खर्च हो, कंपनियों का लालच या तेल के दाम, ये ठीक नहीं है। ज्यादातर मामलों में कई चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं।
हाँ, ये समझना जरूरी है ताकि हम सही समाधान ढूंढ सकें। दूसरी अहम सीख है असली और नाम मात्र का फर्क समझना, नॉमिनल वर्सेस रियल वैल्यूज। अगर आपकी तनख्वाह 5% बढ़ी, लेकिन उसी साल महंगाई 7% रही, तो नाम के लिए तो सैलरी बढ़ी, पर असल में आपकी खरीदने की ताकत, रियल इनकम 2% घट गई। ये बात हम सब महसूस करते हैं ना?
बिल्कुल, खासकर नौकरी पेशा लोग। तीसरी बात जो मुझे काफी प्रभावशाली लगी, वो है उम्मीदों की ताकत। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चीज नहीं है, इसका ठोस आर्थिक असर होता है। अगर लोगों के मन में बैठ जाए कि महंगाई बढ़ती ही रहेगी, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक का संवाद, उसकी पारदर्शिता और उसकी साख, मतलब क्रेडिबिलिटी, इतनी जरूरी है,
इतनी नजर रखी जाती है। और चौथी बात, नीति बनाना एक संतुलन साधने जैसा है। महंगाई से लड़ने का कोई आसान या बिना दर्द वाला रास्ता नहीं होता। अक्सर नीति निर्माताओं को मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, कीमतों को स्थिर रखने और आर्थिक विकास या रोजगार को बचाने के बीच।
सही कहा। भारत में भी ये बहस चलती रहती है कि RBI को ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए या महंगाई पर। ओलनी की किताब हमें इन दुविधाओं की जटिलता समझाती है।
किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। जैसे ओलनी कहती हैं, मुद्रास्फीति असल में कीमतों के बढ़ने के बारे में उतनी नहीं है, जितनी आपके पैसे का मूल्य घटने के बारे में है।
हाँ, ये बहुत गहरी बात है। फोकस कीमत पर नहीं, खरीदने की शक्ति पर होना चाहिए।
बिल्कुल। एक और सोचने वाली बात, ये पूछना कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा खर्च या टूटी सप्लाई चेन के कारण है, एक गलत चुनाव है। सबसे गंभीर दौर तब आते हैं जब दोनों एक साथ होते हैं।
हाँ, ये फिर से हमें याद दिलाता है कि किसी एक विलेन को ढूंढने के बजाय पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। मल्टी कॉजल है ये।
और नीतिगत चुनौतियों पर ये बात बहुत खरी लगती है। गंभीर मुद्रास्फीति की समस्या का कोई दर्द रहित इलाज नहीं है। बहस अक्सर स्थिर कीमतों और उच्च बेरोजगारी के बीच कम दर्दनाक ट्रेड ऑफ चुनने के बारे में होती है।
बिल्कुल। ये हमें समझाता है कि जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, तो उसके पीछे क्या कश्मकश होती है। वो आसान फैसला नहीं होता।
हाँ, और उम्मीदों को लेकर ये चेतावनी भी महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति की उम्मीदें एक बार जनता के मन में बैठ जाएं तो उन्हें हटाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है।
ये महंगाई को शुरुआत में ही कंट्रोल करने की अहमियत बताता है।
तो ये सारी जानकारी हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकती है? पहला तो है पर्सनल फाइनेंस, है ना?
हाँ बिल्कुल। ये समझ हमें बताती है कि महंगाई के समय में सारा पैसा कैश या सेविंग्स अकाउंट में रखना शायद समझदारी ना हो, क्योंकि उसकी कीमत घट रही है। हमें ऐसे निवेश के बारे में सोचना चाहिए जो महंगाई को मात दे सकें, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, बेशक उनके जोखिमों को समझते हुए।
और अगर लोन लेना है तो फिक्स्ड रेट वाला लोन फायदेमंद हो सकता है, और अपना घरेलू बजट बनाते वक्त महंगाई दर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
हाँ बिल्कुल। और नौकरी पेशा लोगों के लिए सैलरी पर बात करते समय ये जानना जरूरी है कि असली बढ़ोतरी कितनी मिल रही है। सिर्फ नंबर देखने के बजाय ये देखना कि महंगाई एडजस्ट करने के बाद आपकी खरीदने की शक्ति कितनी बढ़ी।
सही है।
और एक नागरिक के तौर पर भी ये ज्ञान काम आता है। हम आर्थिक समाचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब टीवी पर बहस होती है या अखबार में लेख छपता है तो हम थोड़ा क्रिटिकली सोच सकते हैं।
हाँ, कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है।
एग्जैक्टली। जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता या बढ़ाता है तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है और इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। छोटे बिजनेसमैन भी इस समझ का इस्तेमाल अपनी कीमतों और स्टॉक को मैनेज करने में कर सकते हैं।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए एक बड़ी सीख ये रही कि महंगाई सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, इसका सामाजिक पहलू बहुत गहरा है। ये कैसे चुपचाप कुछ लोगों को फायदा और कुछ को नुकसान पहुंचाती है, ये जानना काफी आंखें खोलने वाला था।
हाँ।
और हाँ, उम्मीदों का हमारी आर्थिक हकीकत पर इतना सीधा असर हो सकता है, ये भी कमाल की बात है।
मेरे लिए सबसे अहम पहलू शायद आर्थिक साक्षरता का महत्व ही है। ओलनी की तरह जब कोई मुश्किल विषय को इतने साफ और सरल तरीके से समझाता है तो लगता है कि सही जानकारी हमें कितना आत्मविश्वास दे सकती है।
सही कहा।
और दूसरी बात, नीतिगत फैसलों की जटिलता को समझना। हमें यह एहसास होता है कि अर्थव्यवस्था को चलाना कोई आसान काम नहीं है, शतरंज के खेल जैसा है जहाँ हर चाल के कई अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं।
बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। मार्था ओलनी हमें याद दिलाती हैं कि मुद्रास्फीति सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है, यह समाज में धन और अवसर के बंटवारे को भी बदलती है। तो अगली बार जब आप महंगाई के बारे में सुने या उसे महसूस करें तो एक पल रुककर सोचें, यह सिर्फ आपकी जेब पर कैसे असर डाल रही है और आपके आसपास के लोगों पर, अलग अलग आमदनी, अलग अलग हालात वाले लोगों पर इसका क्या और कैसा असर हो रहा है।
हाँ, क्या सिर्फ चीजों के दाम बदल रहे हैं या समाज में कुछ और भी बदल रहा है, सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एगथ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।